ओम शांति। बाप दादा ने जिनको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, ऐसी वरदानी मूरत आत्मा आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजू भाई हम सभी के बीच में है। हम प्रसन्न चित्त चेहरे से और एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप यज्ञ के वह बहुमूल्य रत्न हैं, जो बचपन से ही बाबा के यज्ञ में आए। दादियों और दीदी की खास आपने बहुत समीप से पालना ली और अभी भी यज्ञ में अति समीप आत्माओं में से आप एक हैं, जो प्रतिदिन दादियों को मिलना, दादी जी के नाम से पत्र हम सभी तक पहुंचाना, मुरलियों के अंदर जो भी हम सार धारणा वरदान आदि सुनते हैं पढ़ते हैं, वो विचार सागर मंथन करके लिखना, ये सब सेवा बाबा ने आपको दी है। अव्यक्त बाप दादा रात को हम सभी को मिलते हैं और चार घंटे में ही तो ईमेल के अंदर मुरलियां सारे विश्व में पहुंच जाती हैं। वो मेहनत राजू भाई और उसकी सारी टीम मिलकर के करती हैं। ग्राम विकास प्रभाग के आप मधुबन के कोऑर्डिनेटर हैं और देश विदेश में आपकी सबसे बड़ी विशेषता ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को सशक्त बनाना, भट्टियां आदि कराना, और उसके लिए सारे ही भारत में और विश्व में आप भ्रमण करते रहते हैं। ऐसी सरल स्वभाव की स्वामी आत्मा आदरणीय राजयोगी राजू भाई हम सभी के बीच में है। आज का विषय है निर्विघ्न अवस्था द्वारा सेवा। आदरणीय राजू भाई जी,
ओम शांति। हम सभी मीठे बाबा की यादों में मधुबन की इस वरदान भूमि में विशेष तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में इतना बल है जो उसके आगे कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आज का जो विषय मुझे दिया गया निर्विघ्न अवस्था, निर्विघ्न स्थिति, जब से हम सब बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक जन्म मिला, तब से हम सब ने विघ्नों का आवाहन किया है। विघ्नों को आना है और हमको विघ्न विनाशक बनना है। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे आगे कोई विघ्न आता ही नहीं है, क्योंकि नया ज्ञान है, नई धारणाएं हैं, जिस दिशा में दुनिया जा रही है उसकी विपरीत दिशा को हम सब ने पकड़ा है। कलयुग के अंदर पांचों विकारों का फुल फोर्स है, पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। इन पांचों तत्वों के अटैक और माया के अनेक विघ्न हरेक ब्राह्मण आत्मा को फेस करने पड़ते हैं और उनको पार करते हुए उसे अपनी निर्विघ्न अवस्था बनानी है। इसलिए कोई भी बात अगर किसी के सामने आती है तो ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों आई है, कैसे आ गई, नहीं आनी चाहिए। हर बात संभव है, कोई भी पेपर विघ्न बन करके हमारे सामने आ सकता है। और बाबा कई बार बच्चों को कहते भी हैं, बच्चे कहते हैं बाबा अपनी माया को रोको, माया को नहीं भेजो। तो बाबा कहता है कि मैं तो अपनी माया बेटी को कहता हूं कि जा करके देखो ये कितना मजबूत है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी चैलेंज इसने की है, मैं क्यों उसको रोकूंगा। इसलिए माया अथवा विघ्नों का काम है आना। डरते तो नहीं है ना, घबराते तो नहीं है। कोई भी बात आ जाती है, किसी भी प्रकार का विघ्न आता है, तो विघ्न हिलाता तो नहीं है। बाबा हम सबको बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान देता है। तुम ही मेरे बच्चे अचल अडोल एक रस अंगद के समान, महावीर के समान बलवान हो, पहलवान हो। इसलिए कोई भी बात आती है, महावीर की विशेषताएं आप सबने सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, तो उसने बड़ी बात को भी बहुत छोटा कर दिया। बड़े से बड़े रूप में सुरसासुर जैसी असुर उनके सामने आए, उनके मार्ग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपना छोटा रूप बना करके उसे पार कर लिया। कहीं पर सामना करना पड़ा तो सामना किया, और कहीं पर अपने रूप को परिवर्तन करना पड़ा तो परिवर्तन कर लिया। कभी बड़ा रूप बना लिया, कभी छोटा रूप बना लिया। ये महावीर की बहुत विशेषताएं शास्त्रों में गाई हुई हैं। विघ्न विनाशक की पूजा तो आप सब ने महाराष्ट्र में बहुत की होगी। विघ्न विनाशक के रूप में श्री गणेश की पूजा हमारे भारत के अंदर अभी हर प्रांत में बहुत धूमधाम से होने लगी है। किसकी यादगारें हैं, क्यों ऐसी पूजा हो रही है? एक विचित्र सा रूप, मनुष्य के सिर पर एक हाथी की सूंड, और उसको इतनी महानता से, इतनी भावना के साथ हम सब पूजते हैं। किस चीज का ये प्रतीक सिंबल है? बाबा ने हम सबको इसके आध्यात्मिक रहस्य सुनाए हैं। इस ब्राह्मण जीवन में जो आत्माएं नॉलेजफुल हैं, विशाल बुद्धि का प्रतीक हाथी की सूंड है, विशालता है, तीव्र बुद्धि है, परखने की सूंड लंबी है, दूर से आने वाली बात को भी सहज परख सकता है, और सिर्फ परखता ही नहीं है लेकिन उसको समा लेता है। पेट बड़ा दिखा दिया है, समाने की भी शक्ति है उसके अंदर, परखने की भी शक्ति है, और बहुत विजडम है। जब चलता है तो कितनी मस्त चाल उसकी होती है, भले उसके आगे आगे पीछे कितने भी भौंकने वाले हों, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाबा भी एक ओर हम सबको महावीर का टाइटल देते, दूसरी ओर विघ्न विनाशक श्री गणेश का टाइटल देते, तीसरी ओर माया को चैलेंज करने वाले अंगद का भी टाइटल देते। अंगद की विशेषताएं तो बहुत सुंदर वर्णन की गई हैं। रावण समझता था जिस बलि को, जिस इसके पिता को राम ने मारा छल से, आज उसकी सेना में भर्ती हो गया है, मैं उसको कैसे भी अपनी सेना में मिला लूं। बड़ी विचित्र कहानी बनाई है कि उसको बहुत प्रलोभन पहले देने की कोशिश की, बहुत बहकाने की कोशिश की कि तुम राम के साथ क्यों मिला हुआ है, तो हमारी सेना में आ जाओ। और जब उसकी बात अचल अडोल रही कि वो नहीं आएगा, तो उसके साथ संवाद के लिए तैयार पहले नहीं हुआ, और फिर उसका सम्मान नहीं किया। वैसे कोई भी संदेशवाहक दूत बनकर के कोई दूसरी सेना में जाए तो उसका अपमान नहीं होता, उसको सम्मान दिया जाता। लेकिन जब रावण की दरबार में उसको सम्मान नहीं मिला, उसको सीट नहीं मिली, तो उसने अपनी पूंछ को ही लंबा किया और पूंछ को ही आसन बनाया। और ऐसा आसन बनाया, जब वो रावण के सिंहासन से थोड़ा ऊंचा हो गया तब उस पर बैठ गया जाकर। कैसी सुंदर कहानी है। और उस पर बैठ करके फिर डायलॉग करता है कि राम की सीता, जो आपने ऐसा किया है, बहुत बड़ा अपराध, वापस करो, और नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। जब रावण को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत चैलेंज हो गई, तो उसने पांव जमा दिया कि तुम्हारी सेना में कौन ऐसा है मजबूत जो मेरे पांव को हिला के दिखाए। और ऐसा जमाया जो सब सेनानी जितने उसके थे रक्षक सब हार गए। तो रावण को फिर गुस्सा आया और उस उठा, और जब वो उसके सामने आता है तो अपना पैर वो पीछे कर लेता है, कहता तुम मेरे पैर के आगे क्यों झुकता है, तुम राम के आगे झुको। और उसका इतना गुस्सा था तो कहते हैं कि गुस्से में उसका ताज उसके सिर पर पैरों पर गिर गया, तो संगद ने उस ताज को उठा करके अपने राम दल में फेंक दिया। ऐसी विचित्र कहानी हम सबकी संगम युग की यादगारें हैं। बाबा हम सबको कहता है, बच्चे कितने भी बड़े बड़े रूप में आपके आगे विघ्न आए, समस्याएं आए, पेपर्स आए, रावण कितना भी आपको हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आपका साथी कौन है, आप किस सेना में जुड़े हुए हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसी निर्विघ्न अवस्था बनाने के लिए, नियचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए बाबा हम सबको अपने ऊंचे स्वमान की स्मृतियां दिलाता है। बच्चे देखो कैसे इन सब ने विजय प्राप्त की, ये तुम्हारी यादगारें बनी हुई हैं। और इन यादगारों को देख करके भी तुम अपने स्वमान में रहो, तो कभी भी कोई भी बड़ा पेपर आए, कोई बड़ी बात भी आ जाए, ऐसे लगे कोई बात बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, पार हो जाएगा, नथिंग न्यू, कोई नई बात तो है ही नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में कोई पेपर्स आते हैं, घटनाएं आती हैं, तो उस समय की अवस्था क्या होती है, स्थिति क्या होती है, वो हर एक को चेक करना चाहिए। क्योंकि हम सब बहुत एक ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा इस जीवन का भी लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, संपन्न संपूर्ण कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना। और इतने ऊंचे लक्ष्य की, जब जरूर लक्ष्य ऊंचा होता है तो उसकी चढ़ाई भी होती है, ऊंची चढ़ाई होती है, और चढ़ाई का रास्ता जो फिसलन वाला हो तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। इसलिए हम सबको बाबा कहता है, बच्चे बाबा को साथी बना करके कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रह करके, भले तुम कमजोर भी हो लेकिन तुम्हारा साथी कितना बलवान है, कितना शक्तिवान है, उसको अपने सदा साथ रखो, कभी भी अकेले नहीं हो जाना। क्योंकि कोई भी शत्रु अटैक तब करता है जब हम अकेले हो जाते हैं। अकेलापन होगा तो माया कहीं न कहीं से प्रवेश करके विघ्न डाल देगी। इसलिए सदा स्मृति रहे कि मैं तो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। संगम युग पर बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस दिया है कि बच्चे तुम मेरे साथ साथ रहो। कंबाइंड रहते हो सभी, बाबा को कंबाइंड रखा है। कैसे बाबा कंबाइंड रहता है, स्थूल शरीर के साथ वो कंबाइंड नहीं हो सकता है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और लाइट माइट से संपन्न है, बहुत प्योर है, शुद्ध है। उसके साथ रहने के लिए भी हमें भी समान जोड़ी बनना पड़ेगा। अगर समान जोड़ी में कोई एक बहुत छोटा हो, कोई दूसरा बहुत बड़ा हो, बाबा ने एक बार हंसी में एक बहुत रमणीक मुरली चलाई थी कि अगर पति पत्नी की जोड़ी भी ठीक नहीं होती है तो भी वो साथ रखना नहीं चाहता है। एक बहुत मोटा है, एक बहुत पतली है, एक बहुत लंबा है, एक बहुत नाटा है, जोड़ी समान नहीं है, शोभा नहीं देती है। हम सभी भी बाबा के साथी कंबाइंड तभी रह सकते हैं जब उसके समान लेवल में होंगे, क्योंकि उसके पास अधिक सोचने की लंबाई नहीं है। और हम अधिक सोच सोच करके अपने आप को लंबा बना देते हैं तो बाबा के साथ हम नहीं रह सकते हैं। अगर बहुत व्यर्थ इधर उधर की बातों को खाते पीते ग्रहण करते मोटे हो गए हैं तो भी बाबा बिंदु बिंदु उसके साथ समाज साथ नहीं रह सकता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ की परहेज करो, मेरे समान डबल लाइट बन जाओ, कोई भी बोझ, कोई भी चिंताओं की, जवाबदारियों की बहुत अधिक टोकरियां अपने ऊपर उठा के नहीं चलो। तुम लाइट हो जाओगे, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तुम पवित्र शुद्ध संकल्पों में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। तो बाबा को इस संगम युग पर कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करना बहुत भाग्यवान आत्माओं की निशानी है। भाग्यवान आत्माएं ही बाबा को सब कुछ सौंप करके और अपना साथी बना करके चलती हैं। भगवान हमारे साथ रहे जो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, उसका साथी में बन करके रहूं, ये बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि अगर बच्चे तुम्हारा कोई ऐसा पुराना संस्कार भी है, कोई हिसाब किताब भी है, मैं अगर तुम्हारे साथ हूं मैं निभा लूंगा, उसको पार करा दूंगा, तुम्हें बड़ी बात नहीं लगेगी, कोई असंभव बात नहीं लगेगी। इसलिए बाबा को सदा साथी बना करके कंबाइंड होकर के रहना, कोई बड़े से बड़ी बात आ जाए उसको सोचने की बजाय, विस्तार में जाने की बजाय उसको सार स्वरूप में अनुभव कर, सूली को भी कांटे के रूप में देखना। बड़ी बात हो गई, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कई लोग सोच सोच करके विघ्नों को और नए नए रूप में अपने सामने इमर्ज कर लेते, खड़ा कर देते। विघ्न आने वाला नहीं होगा, फिर भी विघ्न को ले आएंगे। अधिक सोचने से, नेगेटिव सोचने से कई विघ्नों को हम खुद ही उनको आह्वान कर लेते। इसलिए बाबा ने हम सबको कुछ लकीरें बताई, इनके अंदर रहो। सबसे पहले हम सबको बाबा कहता है नॉलेजफुल की स्टेज में रहो। हम सबको नॉलेज होनी चाहिए, समझ बाबा ने दी है, ज्ञान दिया है कि ये कलयुग का अंतिम चरण है और अंतिम चरण के अंदर हर एक को अपना पुराना खाता, अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है किसी न किसी रूप में। और उस पुराने हिसाब किताब को अगर मैंने बहुत बड़ा विघ्न समझ लिया और ये सोचने लगे क्यों आ गया, कैसे आ गया, मेरे सामने ही क्यों आ गया, अब मैं क्या करूं, अब तो बहुत बड़ी बात हो गई, निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए, तो बहुत छोटी दिल। कहावत है पैर की मोच और छोटी सोच कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए ध्यान रखना, अगर हमें मंजिल की ओर आगे बढ़ना है तो कोई भी छोटी सोच करके, छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे करके ठहरना नहीं। बड़ी बातें भी आ जाए, नथिंग, पार हो जाए, बाबा हमारा साथी है। तो नॉलेजफुल की स्टेज में रहना, क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों की उलझन में जाने की बजाय हर सीन को साक्षी दृष्टा बन करके देखना और सेकंड में फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ जाना। दादी जानकी तो कहती है फुल स्टॉप भी लगाना बचपना है, हर बात में कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है, सब बातों में भला है, कुछ पेपर आया है पार हो जाए, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा विघ्न तो शरीर का ही आ रहा है, हरेक के सामने बड़े से छोटे तक शारीरिक बीमारियों के रूप में कोई न कोई विघ्न आता है, लेकिन ज्ञानी तो आत्माएं इतनी निश्चिंत स्थिति में रहती हैं, पूरा हो रहा है, हिसाब किताब चुक तो हो रहा है। अब इतना दादी जी को तकलीफ शारीरिक है, कल शाम को इतना सुंदर संदेश 10 मिनट भर करके पूरे देश विदेश में भेजा कि आप लोग हमारी चिंता परवाह नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, मैं बाबा के साथ बिल्कुल मिली कंबाइंड हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं, बाबा ने मुझे अवसर दिया है अशरीरी बनने का। अब आप सोच सकते हो कितनी महान हस्ती, कितना पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे समय में अशरीरी बनना सहज होता है क्या? जब पीड़ा हो रही हो, कई जगह दर्द हो रहे हो, किसी भी प्रकार का रोग लगा हुआ हो शरीर के अंदर, उस समय कहे मैं तो अशरीरी स्थिति में मौज का अनुभव करती हूँ। एक दिन शांतिवन में मैं सामने बैठा था, मेरे को कहने लगी अपने ग्रुप को बुलाओ। मैंने कहा दादी अभी तो आपको रेस्ट करना है, 9 बजा था रात को। नहीं नहीं तुम बुलाओ, हम टोली खिलाएंगे, सबको मिलेंगे। मैंने बुला लिया 5-6 दिन पहले जब यहाँ थी। जब बुला लिया तो बोलना तो ज्यादा नहीं था, दर्द बहुत हो रहा था अंदर से। बहुत प्यार से दृष्टि देती रही 15 मिनट तक, ऐसे लगा जैसे समाधि की स्टेज में बैठी हो। योग नहीं, समाधि, बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, सब सन्नाटा जैसा हो गया। हम 10-12 लोग बैठे थे, तो जब हम बीच में थोड़ा हिलाया, हमने कहा दादी ये सब आपसे मिलने आए हैं और आप समाधि की स्टेज में क्या अनुभव कर रही हैं, मैं कुछ बुलवाऊं इनसे? तो बहुत मुस्कुरा करके ऐसे बोलती है परमानंद की अनुभूति कर रही हूं, सत चित्त आनंद स्वरूप की अनुभूति कर रही हूं। आप सोच सकते हो जिसको इतना एज है, इतना दर्द है, इतनी चोटें लगी हैं, कुछ भी हुआ शरीर को, लेकिन वो परमानंद की अनुभूति, ये विघ्न है शरीर का, लेकिन उस विघ्न ने उनकी मानसिक स्थिति को, उनके चिंतन को नीचे नहीं लाया, पार हैं, उससे ऊपर हैं, और उसके कारण उनके योग की स्थिति, उनके वाइब्रेशन, उनकी मनसा शक्ति अपने आप सेवा कर रही, दूर दूर बैठी हुई आत्माएं अनुभव करती हैं, दादी स्वप्न में मेरे पास आई, मुझसे प्रेरणा दे करके गई, उसे ये कह के गई, मनसा सेवा हो रही है। विघ्नों की परवाह नहीं, विघ्न बहुत बड़ा है, हम सब समझ रहे हैं कि ये विघ्न हमारे यज्ञ के लिए दादियों के ऊपर बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने उस विघ्नों को खेल की रीति से पार किया, कभी भी उसकी चिंता नहीं कर रही, परवाह नहीं है, अपनी सेवा में लगी है। अमृत वेला मिस नहीं हो रहा है, मुरली मिस नहीं हो रही है, नमाज शाम का योग मिस नहीं हो रहा है, कोई आता है उनको भले ज्ञान नहीं सुनाते, बहुत प्यार से मीठी दृष्टि देती है और उनको शक्ति से सकाश दे करके भेज देते है। तो विघ्नों पर जीत प्राप्त की है, विघ्न नहीं आए ऐसा नहीं, विघ्न आए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो कैसी निर्विघ्न अवस्था है, देखने जैसा है, सीखने जैसा है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे, शारीरिक रूप से विघ्न आते हैं, कई बार पारिवारिक रूप से बहुत विघ्न आते हैं, परिवार में अगर एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता है, कई प्रकार के विघ्न, खान पान में विघ्न आ रहे हैं, कोई सेवा में विघ्न आ रहे हैं, कोई क्लास करने योग करना चाहता उसमें विघ्न आ रहे हैं, हर बात में जहां भी वो आगे बढ़ना चाहता है आध्यात्मिक मार्ग में, उसके आगे कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां, ऐसे पेपर आते हैं, क्या करूं, ऐसा मेरे सामने, मेरी तो दिल है लेकिन ये पेपर आ गया, मैं क्या करूं? और बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे क्या क्यों कैसे नहीं करो, ये मन की स्थितियां हैं, मन को बहुत स्वच्छ रख करके मन मना भव होने का अभ्यास करो, पेपर आएंगे पार हो जाएंगे, इनको चिंतन करोगे वर्णन करोगे तो ये बहुत बड़े रूप में आ जाएंगे। कोई बात अधिक सोची जाती है, अधिक बोली जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बनकर के सामने आती है। और बाबा कहता है मान लो तुम्हारे सामने पहाड़ ही आ गया तो पहाड़ को कोई तोड़ा नहीं जाता, पहाड़ अगर सामने आ जाए तो उसको तोड़ने लगोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, शक्तियां चली जाएंगी। पार करने की विधि या तो साइड से क्रॉस हो जाओ या तो जंप लगा के चले जाओ, और अगर आपके पास शक्ति है तो उड़ करके चले जाओ। तोड़ने लगोगे हिम्मत लेकर के हटा के छोड़ूंगा, कोई दूसरे के आगे रुकावट नहीं आए तो कब तक हटा पाओगे? इसलिए बाबा कहते हैं इस कलयुग के अंदर परिस्थितियां, पेपर्स, विघ्न पहाड़ के रूप में तुम्हारे सामने आ सकते हैं, लेकिन तुम बच्चों का काम है अपनी बहुत ऊंची स्थिति से उसी को जंप दे करके उड़ती कला से पार कर देना, उसमें ठहरना नहीं, उसमें रुकना नहीं, क्या क्यों कैसे की उलझन में नहीं जाना, सर्व शक्तियों का स्टॉक आपके पास जमा होना चाहिए, जिस शक्ति की जरूरत है आह्वान करो आ जाए। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज में हम स्थित रहते हैं, ये समान स्मृति में रहता है कि बाबा सर्वशक्तिमान आलमाइटी है और उसका मैं बेटा आलमाइटी मास्टर हूं, जिस शक्ति की जरूरत है, मान लो उस समय सहन करने की जरूरत है, सामना करने की जरूरत है, समाने की जरूरत है, समेट लेने की जरूरत है, किस शक्ति की आवश्यकता है उसको परखना और परख करके उसी समय उस शक्ति को यूज करना। बात हो गई, बढ़ गई, फैल गई और उसके बाद कहना कि मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे तो समा लेना चाहिए था, मैंने तो बड़ी गलती कर दी, तो बाबा कहता है ये ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। करने के बाद, हो जाने के बाद सोचना, पश्चाताप के रूप में सोचना, ये अज्ञानी की निशानी है। ज्ञानी तू आत्माएं हमेशा सोचने के पहले, बोलने के पहले, करने के पहले सोच लेती है। एक स्लोगन लिखा होता है ट्रक के पीछे, सो देखा होगा आपने, सोचने के पहले सोच लो तेरे साथ क्या जाएगा। सोचने के पहले सोच रहे हैं हम, चिंतन कर रहे हैं, उसके पीछे भी ये राज है कि ये जो सोच रहा हूं, ये जो सोचूंगा वो बोलूंगा वही शब्द बन जाएंगे और वही कर्म हो सकते हैं। इसलिए सोचने के पहले भी ध्यान देना है कि समर्थ है ये सोच, मेरा समर्थ है, इससे इसकी कोई रिजल्ट है, इसका कोई परिणाम निकलने वाला है, या ऐसे ही सोचता जा रहा हूं, जो आया वो सोच रहा हूं, संकल्प चल रहे हैं और जो सोचेंगे उसका चेहरा दर्पण है, चेहरे पर आ जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसी बातें अगर आ भी जाती हैं तो अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, और बोल बोल करके वायुमंडल को दूषित करना, कई बार क्या होता है जिसकी बातें हम दूसरों के आगे वर्णन करते हैं वो आत्मा अपने आप को महसूस करके परिवर्तन कर लेती, लेकिन हमने जो उसके विषय में सोचा, बोला, वर्णन किया और वायुमंडल को या किसी के भावनाओं को हमने परिवर्तित कर दिया उसके विषय में बोल करके, तो उसका बोझ, उसका पाप मेरे पर चढ़ा, क्योंकि उस आत्मा ने तो रियलाइज करके अपने आप को चेंज कर लिया। एक ने अपनी कमी में कमजोरी महसूस की, उसने परिवर्तन कर ली, और मैंने उस विषय को उठा करके दूसरों को सुना करके उसके विषय में उनकी भावनाओं को खंडित कर दिया, तो ये बहुत बड़ा यज्ञ के अंदर विघ्न है, परिवार में विघ्न है। इसलिए हम सब परिवार के सदस्य, कम से कम इस अलौकिक परिवार में जो विघ्न आ रहे हैं, अलौकिक परिवार में विघ्नों का एक मुझे कारण जहां तक नोट होता है, दिखाई देता है, वो ये होता है कि आपसी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, और जहां पर हमारे आपसी व्यवहारिक जीवन में सम्मानजनक बोल नहीं होते वहां पर बहुत सी आत्माएं अपना अपमान महसूस करती हैं। इस स्थान पर जहां पर भगवान के महावाक्य सुनाए जाते हैं, जिस स्थान पर इतनी ऊंची ज्ञान रत्नों की खान मिलती है, उस स्थान की निमित्त आत्मा के बोल ठीक नहीं है। अगर बोल से हमारे संबंधों में, आपसी व्यवहार में तकरार पैदा होती है, दूरियां बढ़ती हैं, तो कई प्रकार के नए नए विघ्न आते हैं, परिवार निर्विघ्न नहीं रहता। और बाबा जो अभी उम्मीद रख रहे हैं, आप सब ने बाबा की 3-4 साल से लहर देखी है, अव्यक्त बाबा यही कह रहे हैं, अभी तक बाबा को ये रिपोर्ट किसी सेंटर से नहीं मिली कि हमारा क्लास बिल्कुल निर्विघ्न है, हमारा सेंटर बिल्कुल निर्विघ्न है, हमारे क्षेत्र के सभी सेंटर्स निर्विघ्न है, या मैं निर्विघ्न हूं, अभी तक किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों विघ्न आ रहे हैं? मैं बार बार ये प्रश्न करता हूं, विघ्नों का अनेक प्रकार से आना संभव है, लेकिन मेरे द्वारा कोई विघ्न क्रिएट हो रहा है उसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक कारण है, जहां तक मेरे ध्यान पर आती है बातें वो सुना रहा हूं मैं, यदि मैं अधिक समय व्यक्त बातों में रहता हूं, किसी भी स्थान पर अधिक समय व्यक्त वातावरण रहता है, तो व्यक्त और व्यर्थ वातावरण को कमजोर बनाते हैं। अगर व्यक्त और व्यर्थ वातावरण है तो वहां कई प्रकार के विघ्न प्रवेश होते हैं। यदि स्थान का वातावरण बहुत चार्ज है, योग युक्त है, साइलेंस का है, अंतर्मुक्ता का है, योग की भट्टियां चल रही हैं, बहुत पावरफुल वायुमंडल बना हुआ है, तो वो स्थान इतना चार्ज हो जाता है जो उस स्थान पर कोई अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश नहीं कर सकती। व्यक्ति तो छोड़ो, व्यक्तियों को प्रवेश करने के लिए बहुत कुछ आगे पीछे देखना होता है। भाई यहां पर मैं प्रवेश कर रहा हूं, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं सीसी कैमरा ना लगाओ, कहीं मुझे कोई नोट ना कर रहा हो। व्यक्ति को प्रवेश करना सहज नहीं है, बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन जो भटकती हुई आत्माएं, उनको तो कोई कैमरा कैच नहीं कर पाता, वो तो कहीं से भी प्रवेश कर जाएंगे। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यदि हमने अपने स्थान के वातावरण को बहुत चार्ज किया हुआ है, बहुत योग का अच्छा वातावरण बनाया है और कहीं वहां पर लीकेज नहीं है व्यर्थ की, आपस संगठन में भी व्यर्थ चर्चा नहीं है, किसी का पर चिंतन नहीं है, पर दर्शन नहीं है, किसी की व्यर्थ बातों की लेन देन नहीं हो रही है, कोई ऐसा साधारण वायुमंडल नहीं है, तो उस स्थान पर कोई भी आत्मा चाहे जितनी खतरनाक हो, बदला लेना चाहती हो, उस स्थान पर वो प्रवेश नहीं कर सकती, वो विघ्न रूप हमारे मार्ग में नहीं पड़ सकती। नहीं तो अधिकतर पुरुषार्थी आत्माओं के आगे अगर अपनी मानसिक स्थिति पर पूरा ध्यान नहीं है, मन मनाभाव की स्थिति में वो नहीं रहता है, साधारण संकल्प व्यर्थ संकल्प चलते ही रहते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं है, तो जो इच्छा रहित आत्माएं इच्छा लेकर के शरीर छोड़ करके गई हैं, कई प्रकार की इच्छाएं हैं उनकी, और वो इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी स्थान पर प्रवेश कर जाती हैं, किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती और इतना परेशान करती हैं, पता नहीं चलता है, योग नहीं लग रहा है, एकदम टेंशन पैदा हो गया, कुछ नहीं लगता है कि कोई कारण भी है यहां पर, कि क्यों ऐसा हो रहा है, अनेक प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती, ये हो गया। जिस हाथ में वो व्यक्ति हाथ डालता है, जिस सेवा में हाथ लगाता है, उसमें नुकसान होने लगता है, क्योंकि वो आत्माएं जो इच्छा वाली उनके ऊपर अटैक करते हैं बीच बीच में, भले प्रवेश न करें लेकिन उनके मार्ग में वो रुकावट डाल देते। और कारण है कि हमने अपने शुद्ध संकल्पों से एक बहुत सुंदर लाइट का ओरा निर्माण नहीं किया। और बाबा हम सबको रोज कहता है कि अमृत वेले आंख खुलते ही इस संकल्प में बैठो कि मैं एक अवतरित आत्मा इस शरीर में प्रवेश हुई हूं और मेरे चारों ओर एक लाइट का सुंदर शरीर है, आभा मंडल है। यदि आप सवेरे सवेरे 15 मिनट लाइट का ओरा इमर्ज करके और उस लाइट के शरीर के साथ काम करना शुरू करो, कर्म इंद्रियां भले ही काम करेंगी लेकिन वो लाइट का शरीर होगा, तो कोई भी आपके ऊपर अशुद्ध वातावरण, अशुद्ध आत्माओं का असर प्रभाव आपके मार्ग को रोक नहीं सकता है, विघ्न नहीं डाल सकता है। नहीं तो इस समय के अनुसार बाबा ने कई बार चेतावनी दी है, अंतिम समय में जब अकाले मृत्यु का तांडव नृत्य होगा, अचानक कई प्रकार की आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो वो आत्माओं को इतनी जल्दी जन्म नहीं मिलता और वो भटकती हैं इस वायुमंडल के अंदर। आपकी अगर बहुत ऊंची स्टेज नहीं है तो आप पर भी असर हो सकता है, इसलिए वो असर अगर हो रहा है मन के ऊपर तो आपके लिए हर परिस्थिति हर कदम पर विघ्न है। सोच भी नहीं सकते ये विघ्न मेरे सामने आ सकता है। अब उस विघ्न को क्रॉस करना है हमको, ऐसे विघ्नों को क्रॉस करना है, क्या क्यों कैसे नहीं करना है, अपनी अच्छी स्थिति से ऊंची अवस्था से हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है बच्चे बहुत श्रेष्ठ चिंतन करो, पॉजिटिव चिंतन करो और बोल पर इतना नियंत्रण रखो कि मुझे वही बोल बोलने हैं जो बोल किसी आत्मा के उमंग को बढ़ाने वाले हों, किसी के उत्साह को बढ़ाने वाले हों, किसी के दिल को दर्द देने वाले न हों। कोई मेरे एक बोल से अपसेट हो जाए, उसकी बद्दुआएं निकले, वो हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने इस अलौकिक परिवार में, लौकिक में भी और अलौकिक में भी, कि हम सब अपनी वाणी पर और अपने संकल्प पर बहुत ध्यान दें। जितना हमारी वाणी कम है, मधुर है, जितनी आवश्यक है, वही बोल अगर हम निकाल रहे हैं तो बहुत सारे विघ्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं, आएंगे नहीं, आएंगे तो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जहां पर अधिक बोलचाल होता है, जहां अधिक वायुमुक्तता होती है, जहां हम बातों में आ जाते हैं, वहां पर बतंगड़ बन जाते हैं, बातें बतंगड़ बना देती है। तिल जितनी बात बोलने से, सुनाने से उतार जितनी हो जाती, उसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता। इसलिए अगर मुझे निर्विघ्न अवस्था बनानी है तो बहुत अच्छा ध्यान रखना, नॉलेजफुल हूं, जो हो रहा है सब ड्रामा में कल्याणकारी है, मुझे न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ सुनना है। अगर इतना अटेंशन अपने आप पर रखेंगे तो अवस्था हमारी बहुत ऊंची और निर्विघ्न बनती जाएगी। लेकिन साधारणता, कई प्रकार की साधारणता, कई प्रकार की आंतरिक मन की इच्छाएं कई समस्याओं को जन्म देती है। हमारा एक स्लोगन हर जगह पर कहीं कहीं लगा होता है, इच्छाएं कम कर दो समस्याएं कम हो जाएंगी। कई नए नए जो विघ्न पैदा होते हैं उनका कारण है हमारी बहुत सारी इच्छाएं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। साधनों के पीछे आत्माएं भाग रही हैं, साधन छोड़ दो तो मानसान के पीछे भाग रही हैं, मैं मेरे के पीछे भाग रही हैं। कितना अकल बाबा ने त्याग पर वृत्ति पर मुरली चलाई, ब्रह्मा बाबा नंबर वन क्यों गया, अष्टरतन कैसे पास होते हैं, उन्होंने बिल्कुल संपूर्ण मैंपन का त्याग कर दिया। आज अपनी दादियों को देख लो, कभी भी मुख से ये नहीं निकलेगा मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूं। हम लोग कभी कभी दादी को कहते हैं, दादी आपने ये किया, आपने ये किया, इस दादी मुझे ऐसे देखने लगती है, क्या बोलता है, मैंने किया, अरे करावनहार बाबा, उसका यज्ञ, उसके बच्चे, उसका परिवार, मुझे तो बाबा ने चांस दिया है भाग्य बनाने का, मैंने कुछ अगर किया भी तो मैं थोड़ी कर रही, वो करा रहा है। कभी भी उसको नहीं बोलो, वो कराने वाला है। जिसका यज्ञ है, जिसके बच्चे हैं, वो पालनहार पाल रहा है। वंडरफुल बात देखो, मधुबन में, शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में हजारों बाबा के बच्चे आ रहे हैं और कोई बड़ी दादियां पालना देने के लिए अभी साकार में नहीं रही। दादी जानकी अहमदाबाद में है, गुजार दादी अपने रेस्ट में है, निर्भय भाई जी अहमदाबाद में है, और देख लो कोई भी ऐसा नहीं। लेकिन कितनी अच्छी पालना, इतने अच्छे अच्छे अनुभव बाबा के घर से सब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करावन हार कौन है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई, वो दिखाई नहीं देता, यही बड़ी बात है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन सब कुछ कर रहा है, उसका खेल चल रहा है और बहुत गुप्त रीति से कर रहा है, किसी भी बच्चे से करा सकता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे कभी भी भूल से भी मैंपन नहीं लाओ, मैंपन तुम्हें महिला बना देगा। बाबा करा रहा है, बाबा का खेल है, स्थापना का कार्य होना है, सत्युग को आना है, बाबा को संपूर्ण विश्वास था। इसलिए कितने भी विघ्न आए बाबा के सामने, मैं समझता हूं हम लोगों के सामने क्या विघ्न आएंगे, हमारे साथ इतने परिवार हैं, इतने बाबा के बच्चे हैं, इतने अनुभव हैं, इतनी बातों को हम क्रॉस करके आए हैं। अगर एक पेपर आता है तो 10 लोगों के अनुभव हमारे सामने आते हैं कि इसने इसको ऐसे पार किया, इसने ऐसे पार किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे कोई सैंपल नहीं था और हर एक पेपर का पहला सामना उसने किया। हमारे बाबा ने कितना फेस किया होगा, आप समझ सकते हो, कोई भी बात होती थी बाबा के ऊपर सीधा ही कलंक लगता था और सबसे बड़ा कलंक कन्या माताओं की संस्था उसके ऊपर यही आता था, इसका चरित्र ठीक नहीं है। 400 कन्याएं अपनी पटरानियां बना दी है, पहले पहले निकाल दिया अखबारों में, और उसके बाद भी क्या क्या आरोप आक्षेप लगे, इन बाबा एकदम निश्चिंत निर्भय एकदम काल तख्त पर बैठा हुआ बेफिक्र वासा, कोई भी प्रकार की परवाह नहीं। क्यों? जहां सच्चाई है उसको सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। कई कहते हैं मैं सच्चा हूं ना, इसलिए मैं सहन नहीं कर पाता, बोल देता हूं जो आता है। बाबा कहता तुम सच्चाई है और सहन नहीं कर पाता तो सच्चाई की वैल्यू क्या है। इसलिए अगर कोई सच्चाई भी है तो उसके साथ साथ सभ्यता है, अगर अथॉरिटी सच्चाई की है तो नम्रता की भी होनी चाहिए। और ब्रह्मा बाबा हमारे आगे संपूर्ण एग्जाम्पल बन करके रहे, दादियां हमारी इतनी एग्जाम्पल बन करके रह रही हैं, कोई गाली भी दे दे, कोई ग्लानी भी करके चला जाए, जैसे कोई बात नहीं, कोई माफ परवाह नहीं, माफ कर, ठीक हो जाए, कोई बदला लेने की भावना नहीं, दो सेकेंड भी वो नहीं सोचती कि ये इसने ऐसा किया, ऐसा बोला मेरे को, बोल के गया, चला गया, भूल गए। इतनी ऊंची स्थिति बनाई है, उस आए हुए विघ्न को सोचा नहीं, वर्णन नहीं किया, फैलाया नहीं, समा लिया। तो 7-8 बातें आप अगर कंटिन्यू देखें जो मैं सुना रहा हूं, एक नॉलेजफुल स्टेज है, एक सर्व शक्तियों से संपन्न स्टेज है, एक सारे परिवार की दुआएं हैं, एक समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज है, विस्तार को सार में लाया, कंबाइंड स्वरूप में रहा, ये सब निर्विघ्न अवस्था की निशानियां हैं। अगर सचमुच मैं अपनी अवस्था को निर्विघ्न बनाना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रकार का पेपर आए, उस पेपर को बहुत धैर्यता के साथ, बहुत माइंड को स्थिर रख करके, आई हुई बात चली जाती है। बाबा कहता है कोई पेपर सदाकाल का नहीं होता, एक दिन का, दो दिन का, एक घंटे, चार घंटे, छह घंटे का, चलो अधिक से अधिक बहुत बड़े बड़े हिसाब किताब हैं, कोई 2-4 साल चलेगा, लेकिन तुम बच्चे अपनी स्थिति को डावा डोल नहीं करो, ज्ञान को यूज करो, हर पेपर में कल्याण का दृश्य इमर्ज करो। बहुत सारी अकल्याण वाली घटनाएं हमारे सामने आती हैं, लगता नहीं है इसमें कल्याण है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है उसमें भी कोई कल्याण छिपा हुआ है, उसको देखो और उसमें छिपे हुए कल्याण को सोच करके अपनी स्थिति को अच्छा बना कर हिलो नहीं, क्यों कई बातें ऐसी दिखाई देती नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा भगवान का कार्य है, उसकी छत्र छाया है, उसका इतना बड़ा यज्ञ है, क्यों ऐसे पेपर आते हैं, क्यों छोटी छोटी बातें आती हैं, कभी अखबारों में उल्टा निकल जाता है, कभी कोई उल्टा कर लेता है, लोग कहते हैं बाबा ने इनकी क्यों नहीं मदद की, कभी कोई का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। प्रश्न उठाने वाले अनेक उठाते हैं कि तुम तो भगवान को जीवन दी, तुम तो कहते हो मुझे भगवान मिल गया, फिर तुम्हारी भगवान मदद नहीं करता है क्या, मदद तो करनी चाहिए उसको। एक बार हमारे पास एक भाई था, हमारी डिपार्टमेंट में सेवा करता था, और अचानक यहां से मोटरसाइकिल स्कूटर उठाया और मेरे से छुट्टी लेके गया कि भाई जी मैं ज्ञान सरोवर जाऊं, उसमें ज्ञान सरोवर बन रहा था और मेरा ऑफिस वहां तैयार होना था, तो बोला मैं ज्ञान सरोवर के ऑफिस को सेटअप के लिए जाऊं, मैंने बोला जाओ, और स्कूटर ऑन किया चला गया। पता नहीं क्या मस्ती थी, किस लिए गया था, क्या भावनाएं थी उसकी, और जा करके ऐसे ज्ञान सरोवर के बजाय बाबू रोड की तरफ मोड़ा स्कूटर और सामने से बस आई, उसके नीचे आ गया और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जो मैं समझता हूं 8-10 घंटा हॉस्पिटल में रहा होगा और शरीर छोड़ दिया। बहुत सेवादारी था और सारी डिपार्टमेंट मैंने उसको हाथ में अपने दी थी, तुम संभालो, और अचानक शरीर छूट गया। अब मेरे पास चारों तरफ से फोन आने लगे, बाबा क्या इतना सेवाधारी, इतना अथक, यूथ विंग में नंबर 1 सेवा करने वाला, क्या हो गया, बाबा ने क्यों नहीं रक्षा की, क्यों नहीं मदद की। और बाबा को भोग लगा जब संदेशी ने संदेश सुनाया, तो बाबा क्या कहता है, क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, पाठ पूरा हो गया। बाबा ने कहा बच्चे को बहुत फास्ट स्पीड से सेवा करने की आदत थी और बाबा को भी नई दुनिया में फास्ट स्पीड वाले बच्चे चाहिए थे, फास्ट स्पीड वाले बच्चे चाहिए थे, इसलिए बाबा ने बुला लिया। कोई तो बहाना बनेगा, ये कोई कारण बन गया, तो उसका कोई हिसाब किताब उसके साथ था, पूरा हो गया। आप बच्चे प्रश्न क्यों कर रहे हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, बाबा तो गोद में बिठा लेता है, बाबा तो सामने आमने एक्सीडेंट होते फिर भी कई बच्चों को निकाल लेता है, ऊपर से आ जाता है, आकर के मदद कर देता है, इस बच्चे को क्यों नहीं मदद की। हर बात में कल्याण है, कुछ न कुछ रहस्य हैं, राज हैं, बाबा जाने, बाबा के कार्य की विधि जाने। हम अपने प्रश्नों में उलझे मत, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, जिसके साथ जो हो रहा है उसका कुछ कर्मों का खाता है। हम सब बहुत निश्चिंत स्थिति में, ऊंची अवस्था में अगर रहना चाहते हैं, बहुत देखते हुए ज्ञान को यथार्थ रूप से यूज करें, सही दिशा में यूज करें। जब कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है, कल्याणकारी ड्रामा है और उसके बच्चे हम कल्याणकारी हैं, तो कल्याण शब्द आया कहां से? इसलिए कोई भी दृश्य में मूंझो नहीं, उलझो नहीं, बहुत निश्चिंत स्थिति से उसको साक्षी दृष्टा रूप में देखने का अभ्यास बढ़ाओ। और देखोगे तो बात आएगी, आपको पता चलेगा क्यों आई है। क्वेश्चन कहने की जरूरत नहीं, आपको दिखाई देगा ये आई है, इसको ऐसे पार किया जा सकता है। इतनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। इसको ज्यादा मुझाओ नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो। अनेक बातें सोच सोच करके हम इसमें अनेक बातों का कीचड़ा भरते हैं। जो बुद्धि साफ है, स्वच्छ है, बहुत पवित्र है बाबा की, उसको टचिंग यथार्थ पहुंचनी चाहिए। लेकिन वो टचिंग उस तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को उलझाया हुआ है, किन्हीं किन्हीं बातों में मूंझा हुआ है। कई बार बाबा कहता है, मैं तो बच्चों को टेलीफोन लगाता हूं, कई बच्चों ने तो अपने टेलीफोन का रिसीवर उतार के रख दिया होता, हेलो हेलो करता हूं तो कैसे उठेगा। और कई बच्चे इतना इंगेज करके रखते हैं, इतना इंगेज करते हैं, जो मेरी आवाज उन तक पहुंचती नहीं। समय पर मैं साथ देना भी चाहूं, मदद करना भी चाहूं, फिर भी वो मदद को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि इतना उलझे हुए रहते हैं, अनेक प्रश्नों में उलझे हैं। बाबा क्या करेगा? फिर कहेंगे बाबा टच नहीं करता, बाबा कहता मैं साथी हूं, साथ निभाता कहां है, बाबा कहता मैं मदद के लिए बंधा हुआ हूं, बाबा तो कभी मदद करता है, ऐसा अनुभव ही नहीं होता मुझे। क्यों? जो विधियां हैं, अगर मैं यथार्थ विधि पूर्वक चल रहा हूं तो भगवान हमारे को मदद करने के लिए बना हुआ है। हमेशा मदद आपको अनुभव होगी, साथ का अनुभव होगा। लेकिन विधि के बिना अगर हम कुछ भी करेंगे तो बाबा साक्षी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा वो, बहुत न्यारा प्यारा। इसलिए अगर हम मदद लेने की विधि को हमको पता है कि मदद तब मिलती है जब मैं पहले हिम्मत का कदम आगे बढ़ाऊं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर मेरे आगे बार बार विघ्न आ रहे हैं तो चेक तो करो मेरी लगन कैसी है। अगर मेरी लगन ढीली है, मेरी लगन में वो आग नहीं है, लगन में कोई भी प्रकार के उमंग नहीं, उत्साह नहीं, लगन माना प्यार, अगर बाबा के प्रति मेरा जिगरी प्यार नहीं है तो विघ्न आएंगे और वार करेंगे। अगर लगन की अग्नि तेज है, बातें आती हैं, पार हो जाते, विघ्न भस्म हो जाते, आग के अंदर पड़ते ही जल जाते। इसलिए अपनी लगन को चेक करें, हमारी लगन कितनी है। पढ़ाई से प्यार है, अमृत वेले से प्यार है, संगठन में बैठ करके एक दूसरे से शक्ति, एक दूसरे के अनुभवों की लेन देन करने की शक्ति है। संगठन हो रहे हैं, हम किनारे घूम रहे हैं, संगठन में बहुत बड़ा बल है, हम संगठन को कभी भी छोड़ नहीं सकते। एक दूसरे के अनुभवों से सीखना, एक दूसरे के अनुभवों के समीप आना, एक दूसरे से गहरी रूहरियान करना, बहुत बल मिलता है इन सब बातों से। इसलिए बाबा ने जो हमारे स्रोत बनाए हैं, हमारी प्रगति के लिए, हमारी अवस्था को ऊंचा बनाने के लिए, उन स्रोत को कभी भी बंद मत करो। बहुत अच्छे अच्छे नियम है, जैसे भोग लगाने का है। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, भोग लगाना क्या है, बाबा थोड़ी खाता है, क्या बना के रखा सिस्टम भक्ति का, छोटी सी बात है। लेकिन बाबा ने वो नियम बनाया है, तो नियम में कुछ बल है। क्यों बनाया? बाबा भले खाता या नहीं खाता। एक बार हंसी में मैंने, हम लोग मधुबन वाले भाई बाहर बैठे थे और बहन संदेशी भोग बना करके, भोग ले करके बाबा के कमरे में गई, और बाबा यहाँ आए हुए थे इसी मेडिटेशन हॉल में। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही बोल दिया कि बहन जी, बाबा तो ऊपर आया हुआ है, तुम फोटो को भोग लगाने जा रही हो क्या? बाबा को डायरेक्ट खिला दो जा करके। तो ऐसे ही बात थोड़ी सी वातावरण में आई, बातें होने लगी, बाबा तक पहुंच गई आके। बाबा को पता चला कि बच्चों ने ऐसे ही बोला, तो हंसी में ही है, लेकिन बाबा को उसको बताना तो पड़ेगा ऐसी शिक्षा क्या है। बाबा ने उसका बहुत बड़ा महत्व बताया। बाबा ने कहा बच्चे भले बाबा यहाँ आया हुआ है, लेकिन बाबा को भोग लगाना ये विधि बनी हुई है और इस विधि में कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये भोग कोई बाबा को खिलाने के लिए नहीं बैठे हो तुम, लेकिन भोग जब वतन में लेके जाते हो तो बाबा तो बहुरूपी एक सेकंड में आकर के वहां भी दृष्टि ले सकता, दे सकता है, वासना ले सकता है। और लेकिन वो जो वतन की शक्तियां हैं, वो जो वतन की प्योरिटी है, अगर संदेशी कुछ समय के लिए बाबा के पास वतन पे पहुंच जाएगी भोग लेके, तो वो शक्तियां उस भोजन को चार्ज कर देंगी और वो भोजन जहां मिला दोगे खाने वालों के विघ्न खत्म हो जाएंगे, उनका मन शुद्ध हो जाएगा। ये विधि बनाई बाबा ने, इसलिए भोग लगा के खाओ, कई प्रकार के विघ्नों का हल उसमें है। ब्रह्मा भोजन हो रहा है, कभी अवॉइड नहीं करो, ब्रह्मा भोजन है, बाबा के यज्ञ का भोजन, प्यार से खाओ, दिल से खाओ। भगवान के भोजन में भी बड़ी शक्ति है, कई बीमारियां ठीक कर देती, कभी इसको अवॉइड नहीं करो, कभी नफरत नहीं करो, मैं ये नहीं खाती, मैं ये नहीं खाता। बाबा कहता भोग लग गया ना, सब शक्ति बाबा की उसमें भरी हुई है, थोड़ा सा लो, डिसरिगार्ड भोग का नहीं करो। तो अगर हम सब इन छोटे छोटे जो हमारे ईश्वरीय कायदे बने हैं, ईश्वरीय नियम बने हुए हैं, उनको हम विधिवत रूप से पालन करते हैं। एक बार हम लोग अमृत लेने नहीं पीते, गुरुवार होता है, दादी अमृत पिलाती हैं, दीदी थी तब तक तो बहुत पक्के थे हम सब, भाई दीदी है तो अमृत पीने जाना है, क्योंकि वो एक एक की हाजिरी लगाती थी, अमृत पिलाते समय कौन आया कौन नहीं आया तो हमको जाना पड़ता था। कुछ दिन हम लोगों ने जब दीदी अव्यक्त हुई तो अमृत पीना छोड़ दिया। दादी जानकी ने एक बार बुलाया हम लोगों का, अमृत नहीं पीते हो, तुमको पता है इसमें कितनी शक्ति है, इसको पीना चाहिए। अभी तक भी दादी के पास जब हम लोग जाते हैं, अमृत की लोटी रखी होती, पहले पिलाती है, बाद में बात करती है, इतनी भावना है। और भावना में शक्ति है, इसलिए कोई भी ईश्वरीय नियम कायदे बने हैं, अगर हम विधिवत रीति से उन पर चल रहे हैं, पालन कर रहे हैं, बाबा के नियम और कायदों को हमने यथार्थ रूप से पालन किया है, विघ्न आएंगे, पार हो जाएंगे। आते सबके सामने हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, कोई भी किसी रूप में आ जाए। पास्ट में क्या हमने किए होंगे, कौन से हिसाब किताब सामने आएंगे, किसको क्या पता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम अपनी मानसिक स्थिति को फुल चार्ज करके शक्तिशाली बना करके रहो, मन को कमजोर संकल्प नहीं दो, मन को नेगेटिव संकल्प नहीं दो। एक नेगेटिव संकल्प की एक कहानी सुनाता हूँ, माताओं को थोड़ा ज्यादा आते हैं, कहेंगे कैसा क्यों कहते, भाइयों को बहुत आते हैं, ऐसे माताओं का थोड़ा बच्चों में ज्यादा मोह होता है। एक माता थी, थोड़ा रॉयल परिवार की थी, आती है बाबा की बहुत पुरानी 8-10 साल की बच्ची है। तो मैं क्लास कराने गया, योग की भट्टी थी, तो योग की भट्टी के बाद ऐसे मैंने पूछा कोई प्रश्न है किसी का, तो माता खड़ी हो गई और मुझसे बोलती है भाई जी मेरा योग नहीं लगता, मुझे बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्या बात, इतना अच्छा वातावरण है, इतना सब बाबा के योगी बच्चे हैं, यहाँ तो योग लगाने की क्या मेहनत है, बैठ जाओ योग लग जाएगा। बोली नहीं लगता ही नहीं है, बहुत मेहनत करती हूँ। मैं बुलाया बाजू में, हमने कहा बताओ क्या है, क्यों नहीं लगता है, क्या संकल्प चलते हैं। तो कहती है कि कुछ समय पहले मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया, जब से पति ने शरीर छोड़ा तो ज्ञान था मेरे पास बाबा का इतना अच्छा, तो मैं उसको तो भूल गई, उसको भूलने में मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मेरा इकलौता बेटा है और वो इकलौता बेटा मैं सोचती हूँ ये सारी प्रॉपर्टी का मालिक है, यही वारिस है। और वो जब स्कूल जाता है, जब तक वो आता नहीं है तब तक मेरे अंदर बेचैनी हो जाती और मैं यही सोचती रहती हूँ कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उसका अपहरण ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और अगर वो 5 मिनट भी लेट हो जाता है टाइम से तो बस मेरा बीपी हाई हो जाता है, मैं सहन नहीं कर पाती, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा, मैं इधर नहीं बैठ सकती, उधर नहीं बैठ सकती, बस सोचती रहती हूँ। मैंने कहा तुम बहुत बड़ी ये भूल कर रही हो, बहुत बड़ी भूल, और ये मोह ममता की जड़, जो बात आने वाली भी नहीं है उसका तुम खुद आह्वान कर रही हो। क्यों आह्वान कर रही हो, और आह्वान करते करते आ जाए तो, इसलिए कभी भी इसका आह्वान नहीं करो। कई प्रकार की नेगेटिव वृत्तियां, नेगेटिव संकल्प उस दृश्य को सामने इमर्ज कर देते हैं। हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मान लो आज हम स्वस्थ हैं, हमारा चेहरे को देख के कोई ऐसे कह दे, भाई जी लगता है आपके ब्लड में कुछ गड़बड़ है, और मैं सोचने लगूं पता नहीं मेरे कुछ हो न गया हो, और सोच सोच करके मैं अपनी खुशी गायब कर दूं। है कुछ नहीं, लेकिन सोच सोच करके मैं सोचता रहूं मेरा ब्लड शायद ठीक नहीं है, कुछ हो न गया हो, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, ऐसे ऐसे सोच सोच करके मैं उस कैंसर को आह्वान तो नहीं कर रहा हूं। मैं कई प्रकार की बीमारियों का आह्वान किसी के विचारों को सुन करके भी कर लेता हूं। क्यों करूं ऐसे विचार, जो होगा उसमें कल्याण है, जो होगा उसमें अच्छा ही है। जब बाबा ने सब कुछ ज्ञान समझ दी है, फिर मैं व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को सोच सोच करके उदास हो जाऊं, निराश हो जाऊं, उन संकल्पों के आधार से उन घटनाओं का आह्वान कर लूं, ये सबसे बड़ा जवाबदार मैं हूं। इसलिए यदि मैं अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना चाहता हूं, तो ऐसी कोई भी नेगेटिव बातों को अगर कोई कहे भी सुनाए भी, ये मेरे काम की नहीं है, इसको अंदर नहीं प्रवेश होने दो। अंदर सोचो, नहीं जो होगा अच्छा हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मन से तन से सब अच्छे से अच्छा होने वाला है, संगम युग पर हमें भगवान डायरेक्ट मिल गया, वो हमारा साथी बन गया, ये बातें क्यों नहीं, आने दो आने दो, परवाह करने की बात नहीं, आएंगी खत्म हो जाएंगी। इसलिए कोई भी बातें आए, कैसी भी बातें आए, परिवार से आए, अपने लौकिक से आए, अपने अलौकिक बहन भाइयों से आ जाए, टीचर से आ जाए, कोई से भी आए, बाबा के बच्चे सदा अपना पांव जमा करके रखना कि माया कोई भी रूप में मुझे हिला नहीं सकती। और रावण जितना भी अगर आ जाए ना, कहना तुम तो राम के पास जाना, तुम मेरे आगे क्यों आया, तुमसे राम सामना कर लेगा, ठीक है, लेकिन अपने ऊंचे सम्मान में रहना, उसके सम्मान की इच्छा नहीं रखना, ये व्यक्ति मुझे क्या सम्मान देगा। अगर व्यक्तियों के सम्मान की भी चाहना रही तो कहीं ना कहीं अपमान की फीलिंग आएगी। इसलिए मुझे कोई व्यक्ति से कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन ये स्थिति बना लेंगे ना, इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे कुछ नहीं किसी से चाहिए, न मान चाहिए, न शान चाहिए, न सीट चाहिए, न कोई मेरा कैमरे में फोटो ले ले, क्या लिखा देगा। बाबा ने इतना सम्मान दिया है, इतना सत्कार के शब्द मेरे लिए बोले हैं, अगर बाबा के शब्दों को याद करो, नशा चढ़ जाता है, उमंग आ जाता है, वाह क्या बाबा ने दिया है, व्यक्ति क्या देंगे, आत्माएं क्या देंगी। इसलिए बहुत ऊंचे नशे और सम्मान में रह करके, बहुत ज्ञानी तू आत्मा बन करके आने वाली बातों का सामना करो और बात पास हो जाओ, विजयी बन जाओ। सदा याद रखना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और जहां अपने में, अपने बाबा में, अपने ज्ञान में, ड्रामा के ज्ञान में संपूर्ण निश्चय है, उस आत्मा की कभी भी हार नहीं होती। कितने भी विघ्न आए, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय हमारा जन्म सिद्ध, निश्चय से विजय हमारी हुई पड़ी है और जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए निश्चय को हिलने नहीं देना, कितना भी बड़ा पेपर आता है ना, निश्चय हिल गया तो गया काम से। बाबा ने अपने निश्चय को हिलने नहीं दिया, दादियों ने अपने निश्चय को हिलने नहीं दिया, कितना भी कोई ने हिलाने की कोशिश की, बेगरी पार्ट आया, बाबा बेफिक्र बादशाह, बच्चे हिल रहे हैं, बाबा अब क्या होगा, कल क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाबा मैं बिल्कुल नहीं चाहे, तुमने जीवन किसको दी है, भगवान दाता है, उसके बच्चे बने हो और तुम पैसे के लिए और भोजन के लिए तरसोगे, वो खिलाएगा कैसे भी खिलाएगा, बंधा हुआ है। बाबा ने कोई परवाह नहीं की और एक दिन भी किसी बच्चे को भूखा नहीं सुलाया, निश्चिंत, बेगमपुर का बादशाह था, इसलिए वो निश्चय था, अटूट विश्वास था कि ये भगवान की रचना है, भगवान ने इनको अडॉप्ट किया है, उसका यज्ञ है, सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन नहीं करना, ये पेपर आ गया अब क्या होगा, ऐसा हो गया अब क्या होगा, अरे कुछ भी हो हर बात में भला है, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ और आगे बढ़ा देगा। इसलिए सदा आगे बढ़ते चलो, उमंग उत्साह में रहो, निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए योग के प्रयोग करो। लास्ट बात मैं बताता हूं, अगर कोई पर बहुत बार बार विघ्न आ रहे हैं, वो मूंझा हुआ रहता है, उलझा हुआ रहता है, उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती, तो हम सबको बहुत शुभ चिंतक बन करके ऐसी आत्माओं के प्रति 10 मिनट योग अवश्य करना चाहिए, इनके विघ्न खत्म हो जाए। संगठन रूप में करो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दादी जी हमें क्या कराती थी, कोई विघ्न आता था ना किसी ऊपर, यज्ञ के ऊपर भी कोई बात आती थी, सवेरे 2 बजे कहती थी, संगठन में 10-12 भाइयों को उठा देती थी और हम सब बाबा के कमरे में बैठ जाते थे। पता नहीं विघ्न क्या है, बताती नहीं थी, 2 घंटा योग करना है, 2 बजे से बैठ कर 5 बजे तक हम सब योग करते थे। और बात थोड़े दिन के बाद जब विघ्न खत्म हो जाते, तब दादी हंसते कहती थी, आप लोगों ने जो योग किया ना, विघ्न खत्म हो गया। इसलिए विघ्न जीत वातावरण बने, विघ्न विनाशक सेंटर बने, उसके लिए हम सबको संगठन रूप में बीच बीच में ऐसी योग की तपस्या जरूरी है। शुभ भावना संपन्न संकल्प, कभी भी ये संकल्प नहीं आए ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, इसके साथ होना ही ऐसा है, ये संकल्प नेगेटिव संकल्प है, अवश्य सुधरेगा, अच्छा होगा, क्यों नहीं सुधरेगा, बाबा आया है सुधारने के लिए। सृष्टि का रचयिता कहता, मैंने जवाबदारी ली है सुधारने की, तुम क्यों सोच रहे हो उसके लिए। इसलिए कोई साधारण संकल्प नहीं करना, बहुत शुद्ध संकल्पों से उसको सकाश दो, शक्ति दो, बाबा की करंट लो और ऐसे दो, डायरेक्ट मैं क्या दूंगा, मेरे पास क्या है, लेकिन मैं इतना तो करूं कि ये कांच साफ रहे, इस कांच के ऊपर बाबा की करंट आए और रिफ्लेक्ट होकर के वहां पहुंच जाए। हम नहीं देंगे, देगा बाबा ही, लेकिन ये बुद्धि रूपी कांच जितना जिसका साफ है, स्वच्छ है, इसमें कोई ईर्ष्या नहीं, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, तो क्लीन माइंड के ऊपर बाबा की ऐसे लाइट आती है, शक्तियां आती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर के जहां जरूरी है वहां जा करके उसके विघ्नों को खत्म कर दे। ये प्रयोग है, तो ऐसा प्रयोग करके खुद भी निर्विघ्न बनो, परिवार को भी निर्विघ्न बनाओ, सेंटर के वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाओ, और अगर जोन में भी कोई विघ्न है वो भी हट जाए, ऐसी शुभ भावना रख करके तपस्या करो। ओम शांति।
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ।